ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंध अध्याय 28 श्लोक संख्या 22। इस अध्याय के नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। एवं कृपणया बुद्ध्या स्वचन्तम् अतत् अर्हणम् गृहीतुम् कृतधीः एनम् भयनामा अभ्यपद्यतः। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतत् अर्हणम् ग्रहीतुं कृतधीयेनम् भयनामा अभ्यपद्यतः। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतत् अर्हणम् ग्रहीतुं कृतधीयेनम् भयनामाभ्यपद्यतः। एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतत् अर्हणम् ग्रहीतुं कृतधीयेनम् भयनामाभ्यपद्यतः। शब्दार्थ एवं इस प्रकार कृपणया दीन बुद्ध्या बुद्धि से स्वचंतम पछताते हुए अतत अर्हणम जिस पर उसे नहीं पछताना चाहिए था ग्रहीतुम बंदी बनाने के लिए कृतधीहि दृढ़ संकल्प जवनराज एनम उसको भयनामा भय नामक अभ्यपद्यतः तुरंत आ गया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक जवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका। कृपया दोहराइए। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक जवनराज से बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका। तात्पर्य, मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्म तथा कर्मफलों के लिए उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटे बच्चे या अबोध बालक के रूप में रहता है, तब तक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वे उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दें। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपने संतान को संतान की सहायता नहीं कर सकते हैं। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में डूबा नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बद्ध जीव का यही रोग है। वह न केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपने संतान के लिए इतना धन छोड़ जाना चाहिए कि वे भी इसे इंद्रिय तृप्ति में अच्छी तरह खर्च कर सके। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में लगा हुआ था, किंतु मृत्यु ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य का प्रतीक्षा नहीं करती, वह अपना कार्य तुरंत निपटता ही है। किंतु मृत्यु बिना किसी हिचकिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है। अतः नास्तिकों के लिए यह चरम ईश्वर साक्षात्कार है। जो इस चेतना को भुलाकर मात्र अपने देश, समाज और रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हुए जीवन बर्बाद करते रहते हैं। इस श्लोक में असत अर्हणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथा कथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए का अवसर मिलता है, किंतु वे कृष्ण के कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज इत्यादि के विषय में ही सोच कर अपने जीवन को अनुचित ढंग से उपयोग में लाकर इसे बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। श्री कृष्ण ने भगवद्गीता के 4th अध्याय के 9 नंबर श्लोक में मृत्यु को जीतने की विधि बताई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जपेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को भलीभांति जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वह मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। या जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, वरन भगवान के धाम वापस जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा न करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहता है, किंतु यह कृष्ण भावनावित आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरि बिना न स्मृति ही तरंती ही। भगवान के शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवं कृपणया बुद्ध्या स्वचन्तम् अतत् अर्हणं ग्रहीतुं कृतधियेनं भयनामा अभ्यपद्यतः। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक जवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका। तो हम सभी पुरंजन हैं, सभी पुरंजन हैं, आप लोग में कोई पुरंजन है ही नहीं, ऐसा कहना है मैं पुरंजन नहीं हूँ। आप भी सब पुरंजन हैं, माताएं सब हैं पुरंजन हैं, पुर के मालिक, पुर कौन सा है, नवद्वारे पुरदेही, ये नौ गेट वाले शरीर हैं, नौ गेट है इसमें, नौ गेट है ना, दो आँख दो नाक के दो कान हैं, कितने हो गए, छः हो गए और मुख सात हो गए और गुदे और जननेन्द्रिय जो कि, तो ये नौ गेट है। नौ गेट में रहने वाला जो जीवात्मा उसको कहते पुरंजन, उसी को पुरंजन कहते। तो इस नौ गेट वाला शरीर के पूर्व में बाय सिटी का अंदर शहर का ये जो शरीर रूपी शहर है इसका अंदर रहने वाला जो जीव है उसके लक्ष्य क्या है, क्या है उसके कर्तव्य, अंते नारायण श्रुति। ये अभी रविशंकर सिखाता केवल आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हम इस कर्म में क्या सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाते हैं, अंत में कहते हैं हरि बिना न श्रुतिं तरंती हैं। प्रभुपाद कहते कि किंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है, शिक्षण दे रहे। क्या शिक्षा रहे? कैसे मृत्यु को जीतना? मृत्यु को जीतने का अर्थ क्या है? मृत्यु को जीतने का अर्थ क्या? अरे आत्मा तो अमर है, फिर मृत्यु क्या? अमर अमर है कि नहीं? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लदयन्त्याप न शोषयति मारुत। जीवात्मा को कौन मार सकता है? कोई मारेगा नहीं। न जायते न मृयते वा कदाचित, भगवान कहे गीता में। लेकिन फिर हम मृत्यु को कैसे है? ये शरीर को छोड़ के फिर दूसरे शरीर ग्रहण नहीं करना। कहाँ जाना? जदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमंग मम, मेरा वो परम धाम को प्राप्त करना, जहाँ जाने पर व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रस्त नहीं होता है। तो सभी के सभी मैंने पूरे हमारा समस्त समस्या के समस्या समाधान हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि हम भी ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सभी को लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा शिक्षण देते हैं। भगवान के शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम सभी पुरंजन हैं, पूर्व में रहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम कैसे जाना। जहाँ पर जाने से हमारी मूल समस्या है, चार समस्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हम मुक्त हो जाएंगे है? तो ये हमारा समस्या है। लेकिन हम बद्ध जीव, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति हम सोच रहे हैं कि, लेकिन पुरंजन सोच रहा है कि, जो जीवात्मा सोच रहा है कि नहीं, जीवन का लक्ष्य उसको पता ही नहीं है। हमारा शिक्षा पद्धति ही ऐसा ही है बना हुआ है। दो टीचर है, ये संध्या अमर का स्कूल है, वासुकराचार्य का स्कूल है, दूसरा नारद मुनि का स्कूल है, प्रहलाद के स्कूल है। नारद मुनि से प्रहलाद सीखे और वो अपना स्कूल परंपरा शुरू किए हैं। ध्रुव महाराज भी, ध्रुव महाराज नारद जी के से शिष्य बने। इसलिए मृत्युदेव शरीर त्यागने के समय में साक्षात मृत्युदेव ने आकर कहे कि ध्रुव, ये संसार से कोई भी जाता है छोड़ के, तो वह शरीर को भी छोड़ के जाना चाहिए। ये शरीर को छोड़ दो, दूसरे मृत्यु को एक्सेप्ट करो, शरीर को त्याग के आध्यात्मिक शरीर में फिर वैकुंठ जाएगा है। ध्रुव महाराज ने उसको सुने ही नहीं, और मृत्युदेव का देवता के सिर पर पैर रख के फिर विमान में, दिव्य विमान इसको आया था ले जाने के लिए ध्रुवलोक में, तो उस विमान में चढ़ के चले गए, शरीर को त्यागे ही नहीं है, है? कोई देखा आप ऐसे कोई व्यक्ति शरीर को बिना त्यागे चला गया है? तो काराम वो देखे हैं आप, देखा सुने, जैसे भागवत से ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में ज़्यादा साल नहीं, 400 साल पहले एकदम संत रहते थे हैं, तो काराम जी, उनको लेने के लिए कौन आया? विमान आया और वो सभी लोग देखते देखते वो अपने पत्नी को भी बुलाए, अरे तुम भी आ, तू भी आए क्या? उस पत्नी का नाम क्या था? जीजा भाई हैं, क्या था? बोले कि आजा, तू भी आजा, चले दोनों साथ चलते। पत्नी कही नहीं, तू ही जा, मुझे भेड़ बकरी भैंस इनको पालन करने दे, इतने बच्चों को देखभाल करने दे। तो उसी के बारे में श्लोक कह रहा है कि संसार में ही मति ऐसे ही लोग की लगा हुआ है। जो भक्त होता तो काराम की तरफ, वो ऐसे चिंतन नहीं करता भगवत धाम है, लेकिन जो उनकी पत्नी की तरफ जो फंसे हुआ संसार में, वो कहीं नहीं भेड़ बकरी और ये सब देखभाल कर रहा है, यही जीवन का लक्ष्य है, है? इनको सोचना यही जीवन का लक्ष्य सोचते हैं। लेकिन जीवन के लक्ष्य है मनुष्य शरीर है, दुर्लभ मनुष्य जन्म दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। कौन कहा? भक्ति विनोद ठाकुर हैं, बड़े सुंदर भजन है। उनका कहते कि दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मुझे मिला है, 84 लाख जोनी में भटकते 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 कभी ये शरीर मिल गया। कौन सा शरीर है? कभी हमारा कुत्ती माता भी था, कुत्ता के जोनी में था, कभी मछली के जन्म में, कभी देवता की जोनी में है, कभी पशु के शरीर में, किसी शेर का शरीर में भी थे। कि मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ पंचम स्कंद भागवत में सुखदेव गोस्वामी के, 4 शरीर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है क्रम विकास में है। गाय से भी, गाय जब शरीर त्यागता है तो ऑटोमेटिकली मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। गाय से जो मनुष्य शरीर प्राप्त होता तो उसका स्वभाव गाय जैसे होता, सत्वगुण के होता हुआ है, शांत शिष्ट रहता, सत्वगुण के ब्राह्मण है। जो व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी समझाते कि शेर या बाघ ये भी शरीर त्यागता तो मनुष्य का जन्म इसको प्राप्त होता है ऑटोमेटिकली। तो वो व्यक्ति कैसा होता है? शहर जैसा, वो राजा बनना चाहता, सबको कंट्रोल में रखना चाहता है, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय के स्वभाव उसके, वो किसी के अंडर में नहीं रह सकता, वो सबको अपना अंडर में रखना चाहता है। हाथी ही, हाथी से भी, हाथी शरीर त्यागता तो मनुष्य शरीर मिलता है। तो हाथी से जो मनुष्य बनता कैसे होता हुआ? हाथी की तरह बहुत खाता है, खाता और सोता, पेट भी बड़ा होता, दुकान में बैठ जाता, बिजनेस करता है, वैश्य है, बैठे बहुत खा, दुकान बैठिया है, वैश्य। वैश्य जो है, हाथी जो शरीर त्यागता है उसका स्वभाव ऐसे हाथी की तरफ होता है, खाता पीता मोटा रहता है। और पैसा कैसे आएगा? मनी स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन है। और बंदर से भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जब बंदर से मनुष्य बनता कैसा होता हुआ? उसका स्वभाव बंदर जैसे ही होता है, इधर उधर जंपिंग करते रहता बस है, और बंदर के पीछे भागते रहता। ये कौन है? शूद्र। तो इसलिए हमारा स्वभाव के अनुसार पता लगता है कि हम कौन सा, किससे मनुष्य आए, माने हम यदि ऑटोमेटिकली से जोनी से प्राप्त हुए क्रम विकास में, तो हमारा कौन सा कोई व्यक्ति जान सकता मैं पिछले जन्म में क्या था है? गाय था बा शेर था कि से बाघ था, ये हाथी था कि बंदर था? स्वभाव से ही पता लगता है, हैं? कौन शूद्र संभव है? कलयुग में सब शूद्र है, इसलिए डार्विन ने कहा मनुष्य शरीर कहाँ से आया? बंदर से आया। झूठ कहाँ कहा? प्रभुपाद ने कहा कि डार्विन का थ्योरी पूरा झूठ नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो एक ही के जानता है कि केवल बंदर से ही मनुष्य बनता है। बंदर से मनुष्य सब, ये सब दूसरे पशु से भी बनते मिलके सुखदेव गोस्वामी ने हमको भी परफेक्ट नॉलेज दिया है कि हाथी से भी मनुष्य बनता है, शेर से भी बनता है और गाय से भी बनता है। इनकम्प्लीट नॉलेज दिया। लेकिन यदि हम चाहे कैसे भी भौतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से घूमते घूमते हमको शरीर से मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में रहकर हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की, प्रहलाद महाराज भी कहे ना, क्या कहे, दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और कई जन्म की तपस्या, कई इस चक्र में घूमते घूमते हमको मनुष्य शरीर मिला है। तो यदि दूसरे जीवों के शरीर की तरफ ये भी नाशवान है, ये भी एक दिन हम नहीं कि मनुष्य बन गए तो ऐसे ही अमर रहेंगे, नहीं, शरीर को त्यागना पड़ेगा। लेकिन अर्थदम इसमें विशेष अर्थ है। ये कुत्ता बिल्ली ये भक्ति नहीं कर सकते हैं, डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद जी प्रारंभ से जितने लेक्चर कहेंगे हमेशा कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स हैं, क्योंकि ज़्यादा विदेशों में क्या कुत्ते और बिल्ली रखते लोग हैं, अमेरिका में और इंग्लैंड में सब कुत्ता बिल्ली रखते, ज़्यादा कुत्ता बिल्ली है। कोई मर गया तो कुत्ता के नाम से प्रॉपर्टी लेके चले जाता है। कुत्ता के अपीयरेंस डे मनाते हैं, उसके डिसअपीयरेंस डे मनाया जाता है, बड़ा बड़ा लोग आके इस कुत्ता के बारे में स्पीच देते हैं। ये आस्ते आस्ते हमारे इंडिया में हो रहा है, इंडिया में आगरा में भी डॉग हॉस्पिटल्स हो, बहुत आस्ते आस्ते ये इंडिया में व्याप्त हो रहा है। कृष्ण कॉन्शियस, नहीं तो प्रभुपाद कहते गॉड कॉन्शियस, कॉन्शियस जी ओ डी गॉड, नहीं तो क्या डी ओ जी डॉग, डॉग कॉन्शियस है। तो मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य है कि कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त करना है, जहाँ जाने पर हमें दुख, विशेष दुख जो जन्म और मृत्यु, इससे हम बच जाएंगे। हैं, जन्म कितना कठिन, कितनी कष्ट है, माँ के गर्भ में छोटे कुखी में, और ऐसे ही उसके अंदर ऐसे उल्टे कर कैसे बच्चा रहता, सिर नीचे पैर ऊपर है, इतने मल मूत्र है पिंड के अंदर में रहता है, और कीड़े काटते रहते हैं इसको चारों साइड में, इतने कोमल शरीर बच्चे के होता है, उसको कीड़े काटते रहते हैं, है कुछ कर नहीं सकता है। कोई माता जी को भी क्या खाती, खट्टा खाती है, चिटा चा वो मिर्चा खाती, तो फिर बहुत कष्ट होता है किसको, बच्चे को है। तो प्रार्थना करता, प्रभु मुझे निकाल दो इसके अंदर से, मैं आपकी भजन करूंगा। कौन कहता है भजी व बोलिया से संसार भीतर, संसार में किस लिए आया, भजन करने के लिए है। जो कष्ट होता तो चिल्लाता रोता है, बोला प्रभु मुझे निकाल दो इसका अंदर से, कुछ कर नहीं सकता, मैं बाहर जाऊं, बाहर निकाल दो, मैं आपकी भजन करूंगा। फिर भगवान ने कृपा करके उसे बाहर निकाल देते हैं। देखो आप यदि अभी यदि ऐसे हैं, आपका अभी ऐसे सिर को जैसे बच्चा रहता है, ऐसे ऐसे क्या धनुषाकृति हो, ऐसे पूरा सिर और पैर ऐसे बैंड होकर ऐसे रहता माँ के गर्भ में, अभी आपको ऐसे यदि रख दिया जाएगा आधा घंटा भी नहीं रह पाओगे, आपको पकड़ के जबरदस्ती बोलेंगे ऐसे ही रहो, सिर को पैर में यहाँ टच करा के ऐसे बैंड करके रख दिया जाएगा, रहना आसान नहीं है। लेकिन बच्चे ऐसे ही रहना के लिए बाध्य होता है, उसके अंदर जो रोता है कहते हैं, फिर भगवान ने कृपा करके इसको निकाल देते, भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतर, संसार में इसलिए आया भजन करने के लिए है। लेकिन यहां अगर भूल गया, भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या भरे, अरे भगवान को कहा कि मुझे भगवान निकाल दो माँ की गर्भ से, मैं आपकी भजन करूंगा, बाहर बाहर तो निकल आया, निकल जब आ गया तो बस देखने लगा चारों साइड क्या है, अब फिर मतलब घिर गए लोग इसको आए, सब आ गए, अब गाल में हाल गया है लल्ला है, फिर उसको देखने लगा, वो हंस रहा तो फिर ये भी थोड़ा सा हंसने लगा, बच्चा हंस रहा पर कुछ है आ गए सो, आस्ते 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 तो वो भूल गया, क्या भूल गया, भगवान को जो बोला था कि आपकी भजन करूँगा, यहाँ से निकाल दो मुझे, ये मलमूत्र पिंड के अंदर से, भूल गया, भूलिया रही ले तुम भी अविद्या भरे है, भूलिए भूल गया, बस यहाँ पर आके फिर आस्ते 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 संसार में फंस गया। फिर सोचने लगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा अंकल है, ये आस्ते आस्ते संपर्क में वैसे फंस गया, भूल गया असली माता पिता कौन है, हैं अहंग बीज प्रद पिता कौन, 84 लाख में प्रत्येक जीवात्माओं की असली पिता हैं भगवान है, अब भूल जाते उसको, फिर दूसरा माता पिता बनाए, फिर उनकी से उनके लगा लग गए, फिर उसमें आस्ते 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 जीव संसार में फंस जाता है। अहंग मामेति, मैं और मेरा, ये मेरा माँ है, ये मेरे पिताजी, ये मेरे भाई है, मेरे संसार मेरे घर है, ऐसे कहते कहते आस्ते 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 उसमें जकड़ जाता है। भक्तिनाथ ठाकुर इसलिए हमको सत्र कराते, एक बहुत सुंदर भजन है कि दुर्लभ मनुष्य मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कही बकाहारे, संसार संसार बोले मिछे गेल काल, लाभ ना होइल किछु घटिल जंजाल, संसार संसार कह के यह मेरा दिन ऐसे ही बीत गया है, लेकिन संसार ऐसे समय बीत गया, समय किसको अपेक्षा नहीं करता, प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में लिखे हैं, आयु हरति वही पुंसा है उदयन अस्तम यासु तस्यार्थ ही क्षणानी तो उत्तम श्लोक वार्तया, ये संसार जो समय किसको प्रतीक्षा नहीं करता है, वो आस्ते आस्ते सूर्य अस्त और उदय होकर, उदय अस्त होते हुए हमारा समय को हैं आस्ते आस्ते समाप्त करता है, काल ग्रस्त करता है आस्ते आस्ते, काल किसी को प्रतीक्षा नहीं करता हैं, लेकिन ऐसे होकर हम परमाय को समाप्त करता है, लेकिन यदि कोई उत्तम श्लोक वार्ता में सदा उसी के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, मृत्यु को वो फिर भी जय कर लेता है। उत्तम श्लोक वार्तया। तो इसलिए भक्तों की जो परिचय देते हैं, भक्त कौन है भगवान गीता में इसलिए कहते हैं, दसम अध्याय के 9 श्लोक में, मत्चीत मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते मेरे भक्त का क्या डेफिनेशन है, कौन है मेरे भक्त, जिसके चित्त सदा मेरी चरण में लगा रहता है। किसके चरण में, भगवान के चरण में लगा रहता है। मत्चीत मद्गत प्राण, उसके संपूर्ण जीवन का मेरे सेवा में समर्पित रहा है। मत्चीत मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम, वो जो परस्पर को मिलते हैं, संसार की चर्चा नहीं करते हैं, है? क्या चर्चा करते हैं, केवल भगवान के बारे में चर्चा करते, कृष्ण की कथा, कृष्ण कथा भागवत की चर्चा करते हैं, कृष्ण कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते हैं, जन्म कर्म समय दिव्य, भगवान की दिव्य जन्म कर्म की लीलाओं को चर्चा करते हैं। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, इसमें किस लिए सदा लगे रहते बातचीत करने में, तुष्यन्ति रमन्ति, इनको परम संतुष्टि अनुभव होता है। कोई कामी पुरुष को जैसे कोई स्त्री की चिंता, स्त्री का चर्चा करने में आनंद आता है। आजकल वो ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट ये कहाँ हो रहा है, उस चर्चा का बड़ा आनंद लेते हैं। और कोई कामी पुरुष है तो वो स्त्री का चिंतन करके बस वो उसी का चर्चा करके आनंद लेता है। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करके बड़े आनंद होता है। प्रभुपाद जी कहते कि उदाहरण देते उस तात्पर्य में कि भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा सुख, इंद्रिय सुख आप मांगते हैं कि जो कोई जवान लड़का है नया और एक युवती स्त्री को एकांत में मिल रहा है, पहले बार आप प्रेम कर रहे, तथाकथित प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा ध्वरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। भगवान को प्रेम करना उसी को प्रेम कहते हैं। हम संसार में क्या कहते हैं, लड़की लड़का बस अपने हो गया आनंद, तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी, तो फिर बोले कि ये प्रेम कर रहे हैं दोनों। अरे प्रेम नहीं कर रहे वो, और फंस रहे किस में, संसार में गाढ़े में जा रहे हैं, जन्म तो संसार में, संसार में प्रेम नहीं होता है, प्रेम केवल कृष्ण के साथ होता है, प्रेम दूसरे के साथ नहीं होता है। और जितने हैं सभी ना कुछ ना कुछ स्वार्थ में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से केवल प्रेम करते हैं, तो उसके माध्यम से हम जन्म मृत्यु संसार में और फंस जाते हैं। ये पुरंजन के पक्ष ने इसीलिए सिखा रहा है, तुम सोच रहे कि मैं स्त्री हूँ, तुम स्त्री नहीं है, शरीर तुमको दे दिया गया माया के द्वारा, बना हुआ 5 भूत से, भूमि रप नल वायु खंग मन बुद्धि रे बच, सूक्ष्म और स्थूल शरीर दे दिया गया आपको, लेकिन तुम है नहीं, तुम पुरंजन है, पुरंजन तुम्ही है, तुम्हें अभी पुरुष के बारे में चिंतन करते रहोगे, अगला शरीर पुरुष का थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, पुरुष का शरीर मिलेगा। अब पुरुष भी यदि स्त्री के से चिंतन करते रहेगा, अगला शरीर स्त्री का मिलेगा। तुम स्त्री नहीं कि पुरुष भी नहीं है, इसलिए भक्ति का अर्थ कहते कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, पहले समझते उपाधि से मुक्त हो, मत सोचो कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, तुम स्त्री नहीं कि पुरुष नहीं है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। भक्ति करने के लिए कोई स्त्री का शरीर पुरुष का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। भगवान कहते कि स्त्री वैश्य मांग ही पार्थ विपाशित्य स्ते अपिशु पाप जो नय, स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परंगति, कोई भी हो मेरी भक्ति करने के लिए सभी योग्य है। तो इसलिए भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति करने के लिए नारद मुनि कहते हैं नारद पंचरात्र में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, उपाधि से मुक्त हो, मत सोचो मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये उपाधि, मैं क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण हूँ वैश्य शूद्र हूँ, मैं सन्यासी वा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी हूँ, ये सारे उपाधि है, ये इसको आत्मा के साथ भक्ति के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, असली धर्म क्या है, तथाकथित लौकिक धर्म को त्यागना और भगवान के शरण में आना, इसी को कहते असली धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। इसलिए जो समस्त भौतिक उपाधि से मुक्त होकर सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्न निर्मलम, हृदय को निर्मल करना चाहिए। हृदय में खचड़ा से भरे हुए, क्या खचड़ा भरे हुए, काम क्रोध लो सुकथा सुनोतांग सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थयी अभद्राणी विधुनोति श्रोतसताम। ये जो अभद्र भरा हुआ ये कैसे, हरि कथा का श्रवण कीर्तन करने से, भागवत की सेवा करने से, नित्यम भागवत सेवया, ग्रंथ भागवत को सुनना और व्यक्ति भागवत का भी सेवा करना, दोनों की। भागवत दो है, एक ग्रंथ भागवत है और दूसरा व्यक्ति भागवत है। व्यक्ति भागवत की सेवा किए बिना ग्रंथ भागवत को नहीं समझ पाओगे, हैं? इसलिए व्यक्ति भागवत के माध्यम से ग्रंथ भागवत को समझना पड़ता है, हैं? तो इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मित तत्परत्न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषि का अर्थात बाहिषिक का अर्थ इंद्रियां, और ऋषिकेश इंद्रियां की स्वामी। ये भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ प्रेममयी सेवा। थोड़ा आगे और बढ़ने से कहते कि अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति आगे कहते रूप गोस्वामी। नारद मुनि ने जनरल भक्ति का डेफिनेशन दिया, आगे उसको बढ़ाकर उत्तम भक्ति कहे क्या है ना, अन्य अभिलाषित शून्यम। हैं कौन सा अभिलाष पर होना चाहिए? अन्य अन्य क्या होता है अभिलाष? दिल्ली प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी की, क्या प्रार्थना करते हैं? मोर यही अभिलाष, क्या विलास कुंजे दियो वास, किस लिए? नयने हेरी वो सदा जुगल रूप राशि। खाली देखते रहेगा ना, क्या शांत रस की भक्त देखते रहते। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन क्या कहता? मोर यही ने यही निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। भक्त का अर्थ, भक्ति का अर्थ सेवा। कैसे सेवा? प्रेममयी सेवा, धक्का लगाने वाला सेवा नहीं, प्रेम से भगवान के प्रति आसक्ति, जिसको प्रेम है सेवा करेगा, है उसको प्रेम है सेवा करेगा, बिना कहे उसके अंतर है सेवा। भौतिक रूप से बाह्य रूप से भी हो सकता, मानस सेवा भी हो सकता है। जो अत्यंत गरीब है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उसके पास संपत्ति नहीं, लेकिन उसको बहुत सेवा करने की इच्छा है, तो प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की तरफ सेवा कर सकता है। प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की उदाहरण दी गई किसमें? भक्ति रसामृत सिंधु में। एक कथा में सुना कि पंडित जी ने कहे कि भगवान की सेवा है, यदि किसी गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो मानस सेवा करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मन से सेवा करता, उसके पास धन संपत्ति था नहीं, क्या करता था? मन में ही प्रत्येक दिन, लेकिन वो भी बहुत उन्नत सेवा। आप मन यदि इधर उधर भाग रहा तो फिर वो मानस सेवा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति मानस देह गेह जो किछु मर अर्पिलु तो आप दे नंद किशु, जो सब कुछ अर्पण कर दिया फिर वो मानस सेवा कर सकता है। कैसे मानस सेवा करे? जो भक्ति विनोद ठाकुर तो यदि मन जो सब कुछ भगवान को अर्पण कर चुका है, हैं, वो मानस सेवा कर सकता, नहीं तो मन तो फिर संसार में चिंता, वो आँख बंद करते कि पत्नी की छवि आएगी, क्या करेगा? जिसको प्यार करता उसको वही छवि आएगा, तो वो मानव सेवा कैसे करेगा? मानव सेवा वही करेगा जिसको संसार में आसक्ति समाप्त हो चुका है। प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण मन में ध्यान करता तो देखता था कि है भगवान को बैठे हुए, उनको अभिषेक करता था रत्न वेदी पर बैठ, फिर सिंह अभिषेक करके फिर इनको फिर सूखा गीला वस्त्र निकले, फिर सूखा वस्त्र पहन श्रृंगार करता था रत्न वेदी पर बैठा कर, है सीमा रत्नागर सिंहासनस्थ हुए बैठा कर कल्पवृक्ष के नीचे श्रृंगार करके, फिर उनके पास अच्छा से भगवान बैठ गए तो फिर बोलते अरे स्नान करे तो कुछ खिलाना चाहिए। फिर क्या करता था ध्यान में? खीर बनाता था, लकड़ी जलते चूल्हा लगाता था, लकड़ी जल के फिर उसको पत्र बैठाता था, फिर दूध डालता था, फिर दूध गर्म हो गया उसमें चावल डालता था, चावल खीर के फिर उसमें जो इलायची काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स डाल दे, खीर बन गया अभी तैयार हो गया। और तब देखते हैं कि गर्म गर्म खीर तो भगवान खाता, खीर ऐसी चीज़ है थोड़ा ठंडा होने से टेस्टी होता है, सिर्फ देखता है कि आंगुली डाल के थोड़ा कैसे ठंडा हो गया कि नहीं, और आंगुली ध्यान में डाल दिया तो क्या हो गया, खीर बहुत उगला उगाल रहा था, हाँ खुल गया, सत कुशत आंगुली जला हुआ है। तो वैकुंठ में भगवान बैठे थे लक्ष्मी के साथ, हंसने लगे। लक्ष्मी क्या कोई कारण नहीं क्यों हंस रहे? भगवान के दूत को बजे, बोले जाओ उसको लेके आओ ऊपर, हो गया उसका भजन सिद्धि हो गया। आप यदि यहाँ पर इसी प्रकार हम ध्यान में सदा कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं, मति विषय में नहीं, विषय छाड़िया से रसे मजिया मुख्य बोलो हरि हरि, विषय के प्रति आसक्ति छोड़कर मुख में हरि हरि बोलने से। फिर जो व्यक्ति ऐसे ही सदा कृष्ण को आँख बंद करते ही भगवान ही स्मरण में आते हैं, वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। जिसके मति सदा भगवान के चरण में लगा हुआ, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति है, वही व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड है। स्थावर जंगम किसी भी वस्तु देखता वो दूसरे कुछ नहीं देखता, किसको देखता है? महाप्रभु ने देखते थे, कोई भी नदी देखते थे सोचते थे कि जमुना है, कोई भी वृक्ष कोई भी कदम कोई भी वटवृक्ष देखते थे सोचते कि बंशीवट है, कोई भी पहाड़ देखते थे बोलते कि ये गोवर्धन है। यदि इस संसार को देखते हुए भी सदा हम कृष्ण की स्मरण होता है तो फिर हम मुक्त हो गए। कोई भी वस्तु को देखने हम कृष्ण की स्मरण करते हैं, ये सुंदर स्त्री को देखते सुंदर लड़की को देखते तो हम सोचते कि ये क्या है, गोपी है कोई भगवान के सेविका है। रामानंद राय ने क्या करते थे, रामानंद राय जब महाप्रभु ने एक व्यक्ति को भेजा प्रद्युम्न मिश्र को, कृष्ण कथा सुनना चाहता था, कहे कि जाओ रामानंद राय से सुनो, उससे मेरे को कुछ आता नहीं, मैं सब उससे ही सुना। तो गया तो उसके सेक्रेटरी जो कहा कि अभी तो रामानंद राय एवेलेबल, वो भी वो कुछ कार्य इमरजेंसी कार्य कुछ कर रहे हैं, अभी तो आपको मिल नहीं सकते। बहुत समय बैठा, दो चार घंटा, बोला क्या इमरजेंसी कार्य है, बहुत समय, बोला क्या कर रहे हैं? नहीं, यंग लड़कियों के सब क्या कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, इनको एकांत में इनको सब स्नान करा रहे हैं और इनको वस्त्र पहना रहे, खुद ही इनको साड़ी पहनाते और इनके उनको सिखाते हैं ड्रामा में कैसे जगन्नाथ बल्लभ नाटक में कैसे एक्टिंग करना सिखाते हैं, और कभी कभी उनकी गुह्य अंग भी उनके स्पर्श होता है, लेकिन फिर भी वो निर्विकार रहकर हैं। तो सुना तो बोला ये व्यक्ति क्या कृष्ण कथा का है, एकांत भी यंग लड़कियों के साथ में उनको स्नान कराता है, उनके वस्त्र खुद हाथ में तेल लगाता है, उनके शरीर में स्नान कराता है उनके वस्त्र, ये क्या सिर है? महाप्रभु के पास वापस गया। महाप्रभु ने कहा कि तुम मिस्टेक किया है, तुम राधा रामानंद राय को अपने स्तर पर देखा है, वो जो लड़कियों को देखता तो लड़कियों को लड़की रूप में नहीं देखता है, क्या देखता है? मंजरी के रूप में है, गोपी मंजरी के रूप में देख रहा है, साक्षात इनको कृष्ण की दासी कृष्ण की सेविका समझती, जैसे डेटी में जाकर पुजारी डेटी को स्नान करा के फिर राधारानी को श्रृंगार करती है, उसी प्रकार वो कन्या को यदि वो आप देख रहे हो भौतिक दृष्टि से भौतिक लड़की एक लड़की है सुंदर लड़की है, वो सोच रही कि ये राधारानी की दासी है, ये गोपी है, उनकी उनकी कभी माया स्पर्श नहीं कर सकता है, तुम अपने प्लेटफॉर्म में उनको नहीं देखना, लेकिन जो उस प्लेटफॉर्म में नहीं है और राधा रामानंद राय की इमिटेशन करेगा तो क्या होगा, माया में जाएगा। तो इसी प्रकार जब हमारा मति सदा कृष्ण में लगा रहेगा सर्वत्र हम कृष्ण को दर्शन करेंगे, कहीं भी जा रहे हैं केवल कृष्ण की स्मरण होता है, पानी पीने पर भी क्या सोचते, रस अब शेषु कमते, ये पानी है ये पानी का जो टेस्ट कौन है, भगवान कहे कि मैं हूँ। हर चीज़ में जब भगवान को दर्शन करेंगे फिर अंत समय में भी भगवान को स्मरण करके भगवत धाम जा सकते हैं। भावना भावित व्यक्ति है तो उसके चिंतन इस प्रकार होता है, वो कभी माया को नहीं देखता, किसको दर्शन करता है? पद्म पत्र विवाम भसा, ये संसार में रहकर भी जैसे कमल फूल कमल में नहीं पानी में कीचड़ से निकाला लेकिन पानी में रहता है, पानी में रहने पर भी पानी को स्पर्श पानी उसको स्पर्श नहीं करता है, पानी से तुरंत कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे, ऐसा ही जो व्यक्ति रहता है तो भगवत धाम जाने की तैयार वो योग्य बनता है। लेकिन ये श्लोक कह रहा है कि जो पुरंजन जैसे हैं वो व्यक्ति कैसा होता है, एवं कृपणया बुद्धिया, उसका बुद्धि कृपण बुद्धि है, संसार हमारे सब कृपण है, कृपण का अर्थ संसार के आसक्ति को त्यागना नहीं चाहता, संसार में फंसे रहना चाहता है, ये लोग संसार में दो चीज़ नहीं चाहता है, किसी को कुछ देना नहीं चाहता है और मरना नहीं चाहता है, कोई मरना चाहता है संसार में? यही तो आश्चर्य की बात है सबसे। जख्य को कहे युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, पूछा था किम आश्चर्य, देखिए हनी हनी भूतानी गच्छन्ति जब मंदिरं शेष स्थावर इच्छन्ति, किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, कोई मरना नहीं चाहता और दूसरी बात कोई देना भी नहीं चाहता, कोई किसके पास है संपत्ति कुछ है देना चाहता है, इतना आसान से नहीं देगा, बहुत आसान से संसार में ही लगा हुआ मोह। नारद मुनि ने एक बार कहे भगवान को, भगवान आपका इच्छा से ही माया सबको क्रॉस करके रखा है और आप ही यदि चाहोगे तो माया का पर जो स्पर्श उसको छोड़ देगा, मुक्त हो जाएगा, आप सबको मुक्त कर दो प्रभु, क्यों ऐसा करके रखे? भगवान ने कहे कि नारद जी ये काम आपको ही दे दिया मैं, आप जाओ जिसको चाहते उसको पकड़ के लेके आओ, हैं, जिसको चाहते ले आओ, मुँह पूरा पूरा पावर दे दिया और सब पूरा आपको इनमें। तो नारद पहले जो सबसे पहले आए, देखिए एक लड़का मिल गया है, 21-22 साल का लड़का, यंग लड़का, उसके सामने उतर गए तो देखे, बोला अरे घबराओ मत, मैं नारद मुनि हूँ, मैं तुमको भी सीधे ले जाऊँगा, कहाँ, भगवान के पास ले जाऊँगा, हैं, चलो। बोले नाराज जी, वो घबरा, बोले अभी मैं एक ही लड़का हूँ मेरे पिता माता के, हैं, अभी ठीक है भगवान जाना, मैं सुना हूँ, अच्छा बात है, लेकिन अभी अभी थोड़ा रहने तो, मेरे पिताजी माताजी मेरे शादी का सब संजोग कर रहे हैं, और हमारे वंशरख्या तो हो जाए, शादी तो हो जाए, थोड़ा एक बच्चा हो जाए कि फिर चलेंगे, फिर शादी हो गया, फिर बच्चा भी हो, फिर नाराज जी कह के अभी तो हो गया चलो। बोले नहीं नहीं, देखे ना कितने सुंदर बोल रहा है, पुतली बोल रहे बोला, देखिए ना कितने सुंदर मुख है, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, अगला साल को चल रहे, बस एक दो साल, हर साल नारद जी आते रहे और कुछ ना कुछ बोलते गया, बहाना दिखाते रहे। वो लड़का भी बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसका भी शादी हो गया, उसका पोता भी हो गया, पोता हो गया बोले अरे अभी चल, ऐसे होते होते बुढ़ा होकर मर भी गए, मरने हैं, मर के कुत्ता बन गया, घर के प्रति आसक्त होने के कारण, धन के प्रति अगला शरीर, कुत्ता बन के भाई घर के सामने बैठा रहा, भाव 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 करते रहा। तो अब भी नाराज जी आके कहे कि चलो भाई, अभी तो कुत्ता शरीर से भी कोई भगवद्धाम जाता नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुझे, मुझे पूरा एम्पावर किया गया है, मैं तुमको ले जाऊंगा यहीं से सीधे, अभी तो तुम्हारा आसक्त चले जाना चाहिए। तो बोला कि नाराज जी आपको वही कैंडिडेट नहीं मिलते, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, हैं, आपको पता है कि पिछले जन्म में कितने परिश्रम करके इसको घर बार सब बनाया था, इतने सारे धन संपत्ति बनाया था, ये जो मेरे बहू और बेटा बैठ बैठे इधर देख रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग, सारे संपत्ति को लुटा रहे हैं, फिल्म जाते हैं, क्लब में जाते हैं, क्या सारे लूट जाते, मैं यदि यहाँ बैठूंगा नहीं घर भी सब लूट जाएगा, हैं। तो संसार की आसक्ति ऐसा ही है, इसलिए प्रभु जी को कहते कि जो कृपण व्यक्ति है वो भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते, किसके बारे में सोचते हैं, सोचंतम सोचंतम अतत अहरणम, है, जिसके बारे में पछताना नहीं सोचना चाहिए, अतत अहरणम, जिस पर उसे नहीं पश्चाताप करना चाहिए उसी के बारे में पछताता है, शरीर त्यागने से सोचता है अरे मैं छोड़ दूंगा तो मेरी पत्नी क्या करेगी, कैसे लगे, अरे तेरे पत्नी वो नहीं है, हैं, ये सभी असली, भागवत कहते हैं ये सारे असली लूटर है, तुझे लूट रहे परिवार में जितने रहने वाले ये असली लूटर हैं, अगर कोई बिजनेस करता तो आपको पता चलता कि तो धर्म इसको मिलने वाला, आप जय कहोगे थोड़ा पैसा दे दो भाई, मत चांदा दे दो जन्माष्टमी के लिए, बराधाष्टमी, बोला तेरे लिए बनाया इतना सारे परिश्रम करी धन कमाया, चल बेकार के लोग, और जिस दिन धर्म मिलेगा उसको पत्नी आ जाएगी, पत्नी आएगी जानती है आज जब जब गर्म है, हाथ डालेगी पूरा निकाल देगी बंडल, तब उसकी मुख में मुस्कान आ जाएगी, बोले देखो कितनी प्यार करती है मुझे, है। संसार के लोग ऐसे ही हैं, भगवान के लिए जब देता तो यहाँ से यदि कोई भगवान के लिए थोड़ा देगा तो भगवान इस लाखों गुण भगवान कृष्ण उसको देते हैं, अध्यात्म यहाँ घर बना देता भगवान के लिए तो उसका घर भी कहाँ बन जाता है, वैकुंठ में, वैकुंठ में भगवान उसके लिए घर बना के रखते हैं, तो इस लोग समझते नहीं है, है? तो इसलिए कृपण जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में सोचता है, मेरे पत्नी कितनी अच्छा है, कितनी अच्छी थी, हैं, एकांत में मुझे कितने मीठे मीठे बात करती थी, हैं, और कितनी सारे मेरे जो संकट में कुछ सलाह समस्या आ जाता तो मुझे सलाह देती थी, प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही कहे हैं, तो संसार में ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारा जो शरीर छोड़ जाएगा, हैं, और तुम्हारे आसक्ति घर में होने के कारण फिर तुम सूक्ष्म शरीर में उस घर में प्रवेश करना चाहेगा, घुसने देंगे क्या, कहेगा तांत्रिक लाओ, अरे भूत है, भूत है, कौन आ रहा है घर में, भूत है, भगाओ इसको यहां से, अरे तुम प्रेम किसको करता था, आत्मा को, कि केवल शरीर का ही, पांच भूत से बना हुआ मौल मूत्र बाद गंदे चीज का जो पिंड है इसी को प्रेम करता था, आत्मा को कोई नहीं प्रेम करता है, हैं, जो भगवान को प्रेम करता है वही प्रकृति में आत्मा को प्रेम करता है, हुँ? तो इसलिए स्वचंतम यत अतत अहरणम, इसलिए कृपण होने के कारण जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए वही शरीर की और शरीर का संबंधित सारी वस्तुओं को चिंतन करते रहकर अंत में शरीर को त्याग, मृत्यु उसको बंदी बंदी बना लेता है, कौन, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, काल ग्रस्त रहता है और उसको बंदी बना लेता है, कौन, कफ वात पीता, कंठा कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते, अंत समय में कफवात पित्त, कफवात पित्त हो, ये जो ग्रस्त कर लेते बल भी नहीं सकता है, शरीर त्यागता ऐसा ही चिंतन करके, जैसे जैसे चिंतन किया यंगं व्यापी स्मरण भावम त्यजंते अंते, कड़े जैसे जैसे चिंतन करके शरीर त्यागा अगला शरीर ऐसा ही मिला। कहें पत्नी का चिंतन करके मरेगा तो कम से कम पत्नी का शरीर मिलेगा अगला शरीर है, लेकिन फिर भी जंतु देह पपत्यते, जंतु जंतु शरीर कैसे मिलता है, कर्मेण दैव नेत्रेण, आप अकेले भी निश्चित नहीं कर पाएगा, दैव नेत्रेण अर्थात दैव बैठा है जमराज उधर, ब्रह्मा अपॉइंट किया तो वो बैठा है जमराज, वो आपका विचार करेगा पाप पुण्य विचार करके ही, पत्नी की चिंतन करने पर भी जो सुकृतिवान है तो मनुष्य शरीर देगा, नहीं तो कैसा शरीर देगा, कुछ भी शरीर दे सकता है, कुत्ते की शरीर दे सकता। अच्छा पत्नी कुकिंग करती थी खाती थी, एकांत में बैठकर दोनों खाते थे, भगवान को ऑफरिंग नहीं करते थे, भगवान को ऑफरिंग नहीं, खुद खाओ तो अगला शरीर क्या होगा, पत्नी के चिंतन करके भी शरीर त्यागेगा लेकिन स्वरी शरीर मिलेगा, मनुष्य का भी नहीं है। तो इसी प्रकार कर्मेण दैव नेत्रेण, हमारा कर्म और दैव इसको सलाह करता है, सब चिंतन करके वो शरीर देता हमको, जंतु देह उपपद्यते। तो इसलिए प्रभुपाद जी सलाह देते कि ऐसे कृपण बुद्धि होना नहीं चाहिए, भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे, ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे प्रतीति रहे, इसमें क्या विश्वास है, भरोसा क्या है, कमल जल दल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे, ये जीवन का लक्ष्य है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास, हम सभी कौन है, गोविंद दास है, कृष्ण दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, हम पुरंजन है, पुरंजन है कि कृष्ण कृष्ण दास है, गोविंद दास है, अभी समझ में आया, क्लास के पहले से बोला कि हम सब पुरंजन है तो है, लेकिन हमको बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, गोविंद दास बनना चाहिए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप नहीं कि पुरंजन, हम पुरंजन नहीं है, अभी पुरंजन ऐसे सोच रहे हैं हम, ये घर में रहकर नवद्वारे पूरे देही है, नवद्वार वाले गेट वाले घर में रह के हम सोचते हैं हम ऐसे, लेकिन प्रकृति में हम है कृष्णदास। तो कृष्णदास बनने के लिए अनेच एनएचसी औषधि माया नासी, पुरंजन से आपको कृष्णदास बनाने के लिए एक मेडिसिन लेकर आए, कौन आया लेके, महाप्रभु लेके आए हैं, एनएचसी औषधि माया नासी वाले लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मागी है, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया सही हरिनाम मंत्र लैला मागिया, माग के सब हमको दे दिए, इसलिए मेडिसिन खाना चाहिए। हैं अभी आपको परहेज है क्या, परहेज है कृष्ण प्रसाद खाना और मेडिसिन है हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन करना, ऐसे इसी के माध्यम से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, भगवत धाम को पहुँच सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो चुका है अभी प्रश्न उत्तर करने पर, प्रसाद ऑलरेडी आ चुका है, इधर पहुंच गया है, इधर सभी सीनियर भक्त लोग इसमें दिखाते हैं, तो इसलिए समाप्त, जिसको प्रश्न है तो पर्सनल मेरे से पूछ सकता है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।